ustedes, cantando de amor para otra vida de mí.
No lo hemos acompañado, por cantarle de mí. Va a cantar la puerta. ¿Un buen día?
सब लोग ध्यान पूर्वक शांति पूर्वक दर्शन कीजिए और
Thank you. I'm not afraid. I'm
राधा कृष्ण फिर बात कर जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी है अपने मुख को चुप रखे। भगवान ने एक मुख इसलिए दिया है कि कम बोले, दो कान इसके लिए ज्यादा सुने। अभी फिर बात कर रहे हैं, फिर मोबाइल चल रहे हैं, अभी जो बात करेगा मैं उसको खड़ा कराऊंगा। तो राधा कृष्ण जुड़ किशोर भी मेरे काम स्वरूप में और इस जीवन में मुझे अधिक जिनके बच्चे हैं इनको बात कर रही है, बात करके जिनके बच्चे बातें कर रहे हैं। ये खेल का मैदान नहीं है, ये सत्संग हॉल है। हमें आप भगवान देखिए, अगर एक संसार का साधारण जज आपके पास आ जाए, कोई बड़ा मंत्री आ जाए, तो खामोश हो जाते सब लोग। सारे मंत्रियों के परम मंत्री परम जज भगवान के सामने खड़े हैं और अपनी बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान के सामने अपनी बातें करना भी अपराध है। तो राधा कृष्ण किशोर जी मेरे प्राण स्वरूप में इस जीवन में उनके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई गति या आश्रय है ही नहीं। कब वो दिन आएगा जब मैं काली जी के किनारे पर स्थित कदम वृक्षों के वन में रत्न रहित सिंहासन पर दोनों को बिठाकर उनके श्री अंगों में चंदन प्रदान करूंगा। वो कब दिन आएगा? हाँ जी भैया जी, आपको इतने देर से सुनाई नहीं दे रहा है। आपकी बात इतने महत्वपूर्ण है, कितना ऊंचा भाव देखिए। ये भाव कब आएगा हमारे जीवन में? माला तक तो पकड़ी नहीं हम लोगों ने। अंगों पर चंद्र लगाना तो बहुत दूर की बात है, दर्शन करना नहीं आया, सत्संग सुनना नहीं आया अभी तक, है कि नहीं? कितना ऊंचा स्टैंडर्ड है सुनने वाले से। तो बोलते हैं कि कब उनके अंगों में चंद्र प्रदान करूंगा तथा चावल खिलाते हुए उनके श्री मुख कमल का दर्शन करूंगा। तो दर्शन कर रहे हो केवल दर्शन करो ना, अपनी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं कब मालती गुरु की माला खोलकर दोनों के गले में पहनाऊंगा और उनके अधर्म पर, अधर्म पर ये जो मौत है, कर्पूरयुक्त सुगंधित तांबूल यानी कि पान को अर्पण करूंगा तथा ललिता विशाखा आदि जितनी भी सख्या है उनकी आज्ञा अनुसार दोनों स्त्री चरण कमलों की सेवा करूंगा। भक्ति का शुभारंभ होता है जब किसी साधु पुरुष का दर्शन हो जाए, जब किसी वैष्णव के दर्शन हो जाए। भक्ति शुरुआत ही वहां से होती है। इस संसार में लोग अपने आप को सौभाग्य मानते हैं, सौभाग्यशाली, कि जब लोग उनके पास दो चार गाड़ियां हो, मोटर कार हो, बड़ा घर हो, नौकर चाकर हो, सुंदर पत्नी हो, इसको सौभाग्यशाली मानते हैं। लेकिन भगवत भक्ति के जीवन में ये सौभाग्य नहीं है ज्यादा। असली सौभाग्य तब जगता है जब हमको साधु पुरुषों का दर्शन होए। अभी फिर बातें कर रही हूँ माता जी, उनको ध्यान से ध्यान रखिए। बोलो तो साधु पुरुषों का जब दर्शन, जो जिन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है, जिनका शरीर भगवान को प्रणाम करने में लग रहा है, जिनका मुख उनका प्रचार करने में लग रहा है, उनका नाम लेने में लग रहा है, जिनका पूरे जीवन के लक्ष्य ही अमेरिका जाना या पैसे कमाना नहीं है, जिनका लक्ष्य है भगवान को पाना, ऐसे साधु पुरुषों का जब किसी को दर्शन हो जाए, बोले यही असली सौभाग्य। उस दिन आपका सबसे सबसे कौन सा दिन निकला आपका? हो सबसे वहीं से आपका जीवन का असली शुभारंभ होता है, श्री गणेश होता है और सभी सबसे शुभ दिन हुआ। और जिस दिन प्रभु स्मरण ना हो, भक्तों का संग ना हो, वही दिन सबसे पूज्य दिन है हमारे लिए। राहु केतु तभी गिरते ना जब प्रभु का स्मरण नहीं होता है, तभी राहु केतु आते हैं, शनि की महादशा आती है, क्योंकि भगवान के नहीं बनते हैं हम। हम संसार को गंभीरता से लेते हैं और भक्ति को सोचते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे 70 साल तब करेंगे। भक्ति बूढ़ापा का नहीं है, जब वास्तव में दमखम है तब भक्ति करने की चीज है। तो बहुत सुंदर अनुपम दास ठाकुर जी ने कितना सुंदर भाव दिया है कि कब वो दिन आएगा जब मैं ललिता विशाखा आदि जितनी भी सखियां हैं उनकी आज्ञा अनुसार सेवा करूंगा, क्योंकि हमें सेवा करने का ढंग पता नहीं है। भगवान सामने आ जाए हमें पता है कैसे सेवा करेंगे, पता है साधारण व्यक्ति की सेवा तो हम कर नहीं पा रहे ठीक से, भगवान की सेवा कैसे करेंगे। तो जो भक्त सेवा में परंपरागत अपने गुरु वैष्णव के अनुरूप होकर के आश्रय लिया वही वही महाशय है आप सब बड़े अकारण। जो आश्रय देव भजन करता है कृष्ण कहते हैं मेरे को पाता है, और जो आश्रय देव भजन नहीं करता है वो गमन में रहता है। बहुजन में करे श्रवण कीर्तन तब अपना पाए कृष्ण प्रेम धन। जो आश्रय देव भजन नहीं करता है उसका भजन जो है निष्फल जाता है, भले ही उसको लगे कि मैं 32 माला कर रहा हूं। स्वर्ग की जाएगी मिल जाएगा, नाम यश प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, क्योंकि नाम जब तो किया है ना, लेकिन कृष्ण प्रेम मिलना भगवत धाम जाना जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलना मुश्किल है बिना आश्रय के। इसीलिए हम लोग हरि दुर्लभ नहीं हरिजन दुर्लभ हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही जाना। भगवान को सर्वत्र है कहा नहीं बताइए। किसी ने पूछा स्वामी जी प्रभुपाद जी से, स्वामी जी ये बताइए भगवान कहाँ है। स्वामी जी बोलते ये क्यों बोलते हो कहाँ है, ये क्यों बोलते हो कहाँ नहीं। भगवान तो सर्वत्र है लेकिन ऐसी आंखें चाहिए ना। तो हरिजन दुर्लभ है, भगवान के भक्त प्रभुपाद जी की कृपा से आज जगह जगह मिलेंगे हरिजन। और इस्कॉन का एक नया भक्त भी जो माला कर रहा है शरणागत है, अभी अभी नवदीक्षित दीक्षा लेकर के बैठा हुआ है, वो संसार के सन्यासियों से भी ज्यादा उत्तम है, याद रखना। क्योंकि वो असली चीज में लगा हुआ है, खाली दाढ़ी बढ़ाने से सन्यासी नहीं हो जाता कोई, कि ऋषिकेश के जंगलों में जाकर के भटकने वाले सन्यासी हो गए। सन्यासी का काम है भगवान का प्रचार करना, खुद भगवान को शरणागत होना और गीता भागवत का प्रचार करना, मनमानी व्याख्याएं नहीं करना। तो ऐसे सच्चे भक्तों का जो संग मिल जाता है ना, तो हमारा जीवन देखिए सब लोग घर में चाय कॉफी भी छोड़ जाती है, यार सब तो बहुत दूर की बात है। मीट मांस मछली अंडा जो फ्रिज भरे रहते थे सब गायब, तब जाकर के माला हाथ में आती है, नियमों का पालन शुरू होता है, दीक्षा तब परंपरा से जुड़ता है, व्यक्ति कनेक्टेड होता है। दीक्षा का मतलब कनेक्टेड होना, जैसे तार को आप प्लग में लगाएंगे तभी जाकर करंट आएगा। तो आपके मनुष्य शरीर को जब दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे काले आत्मसम, जब आप आत्मसमर्पण करते हो, जब आप आश्रय लेते हो तब आप परंपरा में जुड़ते हो, अदरवाइज परंपरा मनमाना भोग रहते हो, आश्रय नहीं है। भले या भले कृष्ण मत नहीं जपो, स्वर्ग इत्यादि मिलेगा, नाम जस प्रतिष्ठा इसके और फल है, जो मन में इच्छा है वो सब मिलेगा, लेकिन कृष्ण प्रेम मिलना दुर्लभ है। तो बहुत सुंदर, इसलिए आज्ञा करी और सेवा शरणागत, आज्ञा के हिसाब से आश्रय लेकर के भजन करना चाहिए। श्री नरोत्तम ठाकुर जी महाप्रभु के दासों के अनुदासों की सेवा की अभिलाषा करते हैं। हम कौन है बताइए, कृष्ण कहते हैं जो ये कहता है कि वो मेरा भक्त है डायरेक्ट, वो मेरा भक्त बोलो नहीं है, जो कहता है कि मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। इसीलिए मुकुंद महाराज श्लोक राजा गुरुशेखर जी बोलते हैं दास दासानु 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 7 टाइप्स 7 डब्बे दास दास दास, कितने दासों का दास है, वो भी बनने का प्रयास कर रहा है, अभी बना नहीं, अभी दास भाव कहा है तो बॉस भाव है। हरि बोल, आंखें खोलिए। जैसा कि हम हर बार भक्ति सामर्थ सिंधु से पढ़ते हैं, इस बार भी भक्ति सामर्थ सिंधु से श्री कृष्ण की अन्य विशेषताएं इसको लेंगे कि भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण तो बताए हैं आपको, ठीक है, लेकिन और विशेष और क्या विशेषताएं हैं भगवान में, वो भी बड़ा सुंदर ढंग से इसको बता रखा है, उल्लेख है, उसका पता चलेगा। सब लोग अपने हाथ जोड़ेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकीनन्दनाय च, नन्दरूपकुमाराय, गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूमण्डले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनी नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्चाद्वेषधारिणे, गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदानहे, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सब लोग हाथ ऊपर कीजिए और एक साथ साथ बोलिएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अनेक गुणों की खान है, नाना गुणों की खान, केवल 64 गुण ही नहीं भगवान के, अनंत अनंत गुणों से भगवान की दूसरी समझे। भगवान के बारे में ध्यान से सुनिए, तो बताया है भक्ति सामर्थ सिंधु ने 23 में श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बताया है कि भगवान की प्रशंसा 3 प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से की जाती है? 3 प्रकार से। एक तो है पूर्णतम, पूर्णतर और पूर्ण, पूर्णतम पूर्णतर और पूर्ण। अब इसको समझाते हैं, जब वे संपूर्ण रूप में प्रकट होते हैं तो वहां उन्हें पूर्णतम कहकर प्रसन्न करते हैं। संपूर्ण रूप से मतलब जब स्वयं कृष्ण अवतरित होते हैं, अवतरती इति अवतार, भगवान कृष्ण किसी के अवतार नहीं है, स्वयं अवतारी है, स्रोत है हर चीज के, अवतारों में भी कुछ स्रोत ही है। जब वो स्वयं प्रकट होते हैं प्रदेश प्रबंधन कृष्ण राधा श्याम सुंदर राधा बिहारी के रूप में, तो उनको क्या कहा जाता है? पूर्णतम कृष्ण। समझ रहे हैं? ये प्रशंसा है, इसका मतलब छोटे बड़े हो गए, उनकी की इच्छा अलग अलग समय में अलग अलग तरह से। तो आगे हमारे यहाँ जब वो कुछ कम अंश में प्रकट होते हैं तो उन पर फैलाते हैं, और जब से उससे भी कम अंश में प्रकट होते हैं तो ये पूर्ण फैलाते हैं। पूर्ण पूर्णतर और पूर्ण आती है तीन योगियां विशेषता निम्न वर्ग प्रदर्शित की जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब वे बालिका में रहते हैं, हाँ जब वे गोलोक वृंदावन में होते हैं तो उनके दिव्य गुण पूर्णतम रूप में प्रकट होते हैं। भगवान जब कहा होते हैं अपने अस्थि धाम और इंद्र धाम गोलोक वृंदावन में, तो उसके सारे गुण जो है पूर्णतम के रूप में असंख्य गुण है, अनलिमिटेड गुण ही गुण गुणों की खान। और एक गुण कितने मात्रा में है बोले पूर्ण मात्रा में और बढ़ते जाए, जैसे अगर दयालु है तो फिर वो दया बढ़ते ही जाती है समुद्र के समान, खत्म होती नहीं। अगर धनी है तो इतना धन है कि बढ़ते ही जाता है, हम लोगों का बढ़ते जाता है, भगवान का कैसे होता है बढ़ते जाता है। तो ये गोलोक वृंदावन वाले पूर्णतम कृष्ण है, जब वे द्वारिका में रहते हैं तो उनके गुण पूर्ण रूप में प्रकट होते। थोड़ा नीचे अभी कौन बात कर रहा है, जिससे इशारे से बात की गई, कृपा करके अगर बात करनी है तो द्वारिका में जो भगवान रहते हैं पूर्णतर कहलाते हैं, और जो मथुरा में होते हैं तो उनके गुण पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। जब असुरों को मारना होता है, कंस को मारना होता है, तो भगवान को पूर्ण आने की क्या है, वो तो थोड़ा सा अपने आप को कम करके आते हैं। वही कृष्ण देखिए, क्योंकि असुरों को तो भगवान डायबिटीज देके मार सकते हैं, समझ रहे हैं, कैंसर दे देंगे, हार्ट अटैक दे देंगे, लेकिन आप बोलो फिर ऐसा किया कि भगवान लड़े क्यों, बोले उनकी इच्छा थी प्रभु से लड़ने की। ऐसे भी गुंडे होते हैं जो भगवान को मारने की सोचते हैं, बताओ, समझ रहे हैं, है संसार में रहे है लोग, लेकिन भगवान को चुनौती करके अपने असुरों को भेज करके मरवाना भगवान को, तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उनसे लड़ते भी हैं, उनको आनंद देते हैं, शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सुंदर है। बोलिए हरे कृष्ण
हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण
कृष्ण।
तो आगे बोलते हैं कृष्ण की वेशभूषा तथा मालाएं, अब कृष्ण की वेशभूषा कैसी है, वो मालाएं कैसे पहनते हैं। सामान्यतया कृष्ण के शरीर पर चार प्रकार के वस्त्र रहते हैं, कितने प्रकार के वस्त्र रहते हैं, कमीज, कमीज इसमें शुद्ध में लिखा है जैसा हम लोग कह रहे हैं से इस, और उसमें भी बहुत सुंदर उनके प्रिय भक्तों के द्वारा बनाया हुआ है, भगवान व्यासी रूप से पहनते हैं, खूब बढ़िया से ढील ललित, ललित का मतलब होता है खूब सजाते हैं अपने आप को, ललित माधव सजा सजा करके, क्यों ना सजाए भाई, परम नायक है, नायक मतलब हीरो, इंग्लिश में नायक को हीरो कहा जाता है, ये सुप्रीम हीरो, सारे हीरो के हीरो परम नायक शिरोमणि, और श्रीमती राधा रानी परम नायिका है, हीरोइन, समझ रहे हैं। तो क्यों ना सजाए भगवान, बताइए, पूर्ण हक है सभी, सब कुछ भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं, सब कुछ तो उनका ही है, वो चाहे वृंदावन में पगड़ी में रहे, वो चाहे खूब विलासी रूप में रहे, उनकी मर्जी। तो क्या बोलते हैं, कमीज पगड़ी और मेखला, और मेखला क्या हुआ, कमर, कमरबंद को मेखला बोलते हैं, जो कमर में पट्टा बांधते ना इसे, ये ब्रज के ग्वाला का ड्रेस है भैया, ठीक है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो ब्रज के ग्वाला का ही क्या करते हैं, दर्शन करना चाहते हैं ब्रज के ग्वाला रूप में। शुद्ध भक्तों को बहुत ज्यादा कपड़े में उतना आनंद, वो चाहते हैं थोड़ा सा अंग प्रदर्शन भी बढ़े प्रभु का, थोड़ा क्या बोले, जैसे आपने गर्मी के दिनों को देखा टांग खुली रहती है प्रभु, मतलब सबको दर्शन करने का अवसर मिलता है, और कभी कभी खाली यहाँ फेंका बाधा होता है और केवल गौरव की डाली होती है, कितने सुंदर होते हैं,
उनकी शारीरिक सुंदरता, कोई यह सोचे कि भगवान कपड़े पहन के सुंदर लगते हैं, कपड़े उनसे सुंदर लगते हैं क्योंकि उनका शरीर ही ऐसा है। आभूषणों से भगवान की सुंदरता नहीं होती है, आभूषण भगवान की सुंदरता से सुंदर बन जाते हैं। कहते भी है ना, तो कभी कभी किसी व्यक्ति को हर रंग को जचता है, हर रंग, तो भगवान से रंग सुंदर बनते हैं, संसार सुंदर बनता है, आभूषित होते हैं। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार के वस्त्र हैं उनकी, धोती, भगवान जींस कभी नहीं पहनते, ठीक है, जींस मतलब शुक्राणु, जींस होते ना, जींस हो, आपको पता जींस कैसे बनती है, नाना कितने किलो को मात्र करके जींस को भी मिक्सअप किया जाता है, इसलिए भक्त लोग जींस नहीं पहनते हैं, सादा जींस, धोती कुर्ता। और हमने तो देखा भी है, तो आजकल शुरू हो गया पैंट वैंट जींस वींस, 15 साल पहले भी हमने देखा है अपने से जो बुजुर्ग लोगों को धोती कुर्ता नहीं देखा, हमने अपने पिताजी को भी, सब लोगों को, वो कभी सपने में भी कोई उनको गिफ्ट भी कर दे तो उनको पसंद नहीं आती है, भैया मैं नहीं पहन पाऊंगा, गिर जाऊंगा, पैंट पहन के गिर जाऊंगा बोलते है नहीं, तो ये कल्चर है हमारा। तो भगवान धोती वृंदावन में हुए भक्ति भी होती, वृंदावन में कैसी लाल धोती पहनते हैं भगवान को निकलते, और आज कौन सी पहनी है बिना धोती बताओ, दर्शन किए होंगे लेकिन फिर भी आज मेरा कौन सा कलर पहना है, क्योंकि ठीक से दर्शन किए नहीं, आज ठाकुर तिलक किया तिलक किए, ऐसे दर्शन होने चाहिए आप लोग का, सूरदास जी भगवान का दर्शन किया करते थे, पुजारी पूछता था सूरदास जी बताओ अंधेरे आंखों से कौन से ड्रेस पहनी, बोले आज मेरे ठाकुर की नाम वस्त्र है, आज नीले वस्त्र है, आज मेरे नाम आज गिरे गिरे, आज बोले ब्राह्मण कर, आज ये कर। एक दिन पुजारी ने सोचा लगता है तुक्का बनाना है, उन्होंने क्या किया, खाली फूल पहनाए कुछ जगहों में, थोड़ा जगह वस्त्र नहीं पहनाए, बोले देखता हूँ क्या बता दी, बोले बताओ सुनता है आज आपके ठाकुर जी ने कौन सी ड्रेस पहनी है, बोले सर बताओ, बोले आज मेरे ठाकुर नंगा पहन रहे, आज केवल झूल ही पहन रखे कुछ बस, बाकी सब उनका शरीर दिखाई दे रहा है नंगा पंगा, समझ रहे हैं, ये नहीं देखिए आंखें नहीं है लेकिन दर्शन कर रहे हैं, हमारी आंखें होती हमें याद नहीं रहता है, तब पुजारी उनके चरणों में गिर गया, बोले कि मैं तो सवेरे ड्रेस करता हूं और शाम को मैं भूल जाता हूं मैंने कौन से कलर की ड्रेस पहनाई मैंने, कभी कभी ऐसा भी कुछ लोगों को काम मिले रहते ना कि भगवान का ड्रेस करो श्रृंगार करो, लेकिन उन्हें ध्यान ही नहीं था मैंने कौन सा श्रृंगार किया, क्योंकि उसको मन ही नहीं था, तो खाना पूर्ति थी बस। तो वृंदावन में अंतरिक्ष होगी लाल और पीली पगड़ी तथा नारंगी रंग की पगड़ी पहनते हैं, ये सब प्रामाणिक बात है, सब ये यहाँ पर कुछ बनावटी नहीं है, एकदम नारंगी कलर का और उनकी मधुर मुस्कान से उनके संगियों का आनंद वर्धन होता रहता था, भगवान जब मुस्कुराते हैं ना तो पूरा चेहरा होता है, आपने कृष्ण बलराम के दर्शन किए हैं कितना भरा भरा चेहरा, और भगवान की हंसी कितनी है, दांत दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हंसते हैं, और इतनी मधुर हंसी है, इतना सुंदर वृंदावन में आप देख के आइए क्या आनंद है, परमानंद परमानंद है। आगे होते हैं कृष्ण की इस वेशभूषा को पंडित कहा गया है, जिस प्रकार हाथी का बच्चा रंग बिरंगे उहार यानी कि झूल से सुशोभित करता है, आपको पता है हाथी के बच्चे कभी कभी वो पहना देते हैं बच्चों के कपड़े पहना देते हैं, सिर पे लगा देते हैं, पैरों में बांध देते हैं, पीठ पे रख देते हैं और सुंदर लगता है, उसी प्रकार कृष्ण अपने विभिन्न अंगों में रंग बिरंगे वस्त्र धारण करके अत्यंत भव्य लगते हैं। कृष्ण की केश सजा, अब कृष्ण केश कैसे सजाते हैं वो सुनिए, चंद्रलेप कैसे करते हैं, फूल की मालाओं से सजित उनका शरीर, उनका तिलक और उनका तांबूल पान चबाना, ये आकल कहलाते हैं, कृष्ण सदैव इसी आकल को विधि से सुसज्जित रहते थे और रहते हैं, क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की सेवा करना जानते हैं, कृष्ण को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो उनको पता है, इसलिए वो निरंतर कृष्ण की सेवा में क्या करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने में लगे। और हम लोग क्या करते हैं, अपने को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, लगे रहता हूं अपने लिए अच्छा कपड़ा लेना है, अपने लिए अच्छा शॉल लेना है, और जब कृष्ण को दान भी चढ़ाना हो तो फटाफट चढ़ाते हैं, सबसे फटाफट जो कहीं खोटा सिक्का नहीं चलता हो, जहां गुल्लक मिलता है हम लोग को अक्सर, सही हम लोग की स्थिति यह है। और देखिए भगवान के ब्रजवासियों की स्थिति क्या है, शुद्ध भक्तों की स्थिति क्या है, ब्रजवासी लोग भगवान को बोलते कभी को थोड़ी देर अपने को भूल, अपने को भुला दो थोड़ी देर के लिए, ताकि ग्रह कार्यों में लग सके, थोड़ा सा भोजन बना सके, थोड़ी देर तो आप मतलब हमको चिंतन में ना आओ, उनकी व्यथा ये है। और हम लोग बोलते कभी तो चिंतन में आ जाओ, 24 घंटे भूले रहते हैं, हमारी स्थिति देखिए हमारी बिल्कुल कितना। तो आगे बोलते हैं, कृष्ण के केश कभी सिर के बीच में फूल लगाकर सजे होते तो कभी कभी ये केश तीर्थ तक लटके रहते, इस तरह कृष्ण विभिन्न अवसरों पर अपने केश को भिन्न भिन्न ढंग से सजा देते, समझ रहे हैं, भगवान को पूर्ण रूप से, भगवान के यहां जब आप जाओगे तो वहां पर आपको सिर के बाल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर आपको नेचुरल लावण्य होगा, वहां पर आपके भी बाल ऐसे ही गुच्छे, कभी कभी तो पहचान में नहीं आते भगवान के भक्त और भगवान, ऐसा दिव्य शरीर मिलता है वहां पर देखिए, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा भगवान पहचाने जाते हैं कि ठाकुर जी, ऐसा दिव्य शरीर मिलता है वहां पर भक्तों को भी, और बाल मोर मुकुट वाले घुमरा के लड़ने वाले ठाकुर जी के नेचुरल बाल घुमरा दिए, बाल भी टेढ़े हैं, वो किसी संसारी संसारी क्या वो भक्त ही है, उन्हें भजन लिखा ना, इस बार के ना सब कुछ बना, बोले क्या क्या बना, सब कुछ बोले, बोले बाल भी टेढ़े हैं, बाल भी टेढ़े हैं, मैं तो बाकी ही बाकी बन गई, बाका बन गया मेरा। तो प्रभु जी ने किस प्रकार से अपने को सजाते हैं, अलग अलग जरूरी नहीं कि वो ढूंढ डाले जाते हैं, कभी सीधा भी कर देते, कभी दूसरे प्रकार से सुशोभित कर देते हैं, तो उनके शरीर पर लेते चंदन प्रायः श्वेत रंग का होता है, तो भगवान चंदन लगाया जाता है उनको श्वेत रंग का चंदन, किंतु जब उसमें केसर भी होती है तो क्या रहता है, पीला रहता है, तो वो पीला होता है। कृष्ण अपने गले में गले की माला धारण करते थे, यह माला कम से कम 5 भिन्न रंगों वाले फूलों को सुनकर बनाई जाती है। आज भी देखिए जैसे ब्रह्मा जी हुए कुछ 2-4 फूल हैं उसको प्रयोग करके, ठाकुर जी को भी 5-7 फूल बनाया की माला, ये जहाँ भक्त लोग सवेरे सवेरे यहाँ पर माताएं घेरी जो फूलों का हार बनाती है, तो इस प्रकार से भजन की माला जो है वो धारण करते हैं। यह माला इतनी लंबी रखी जाती थी कि कृष्ण के घुटनों या पांव का स्पर्श करती थी, नीचे से काफी लंबी है, इसलिए माला देखो जब बनाते ना आज थोड़ी छोटी है, नहीं तो ऐसे लंबी कर देते, लंबी करके ऐसे ढीला कर देते, फिर उसको बांध देते हैं। आगे बोलते हैं, इन पुष्प मालाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार के फूलों की मालाएं भी होती थी, जो कभी उनके सिर को सुशोभित करती, कभी उनकी ग्रीवा से लटकती, तो कभी वक्ष स्थल पर कृष्ण के शरीर पर रंगीन चंदन से कलात्मक अंकन भी पाया जाता है। आपको पता है कृष्ण जैसे यहां देखिए पारसार्थी के पता है ऐसे ऐसे बना रखा है, ऐसे ऐसे बना रखा है, बहुत सारे उनके शरीर पर भी सजाया जाता है, नेचुरल सजाया जाता है। एक गोपी की सखी को संबोधित करके कृष्ण के स्वरूप की प्रशंसा करने लगी, उसने उनके श्यामल वर्ण पान खाने से लाल रंग वाला 100 गुनी बड़ी शोभा, फिर पान खाने को कोई यह सोचे कि हम संसार में हमें हम भी 320 नंबर दर्जा वाला पान खाएंगे तो कृष्ण भी खाते रहेंगे, ये जो राधा का भक्ति की बात है, उच्च भक्ति जब व्यक्ति को भगवान से स्वतः ही राग हो जाता है, उनके बिना एक शब्द भी नहीं रह पाता है, ये सब पान भी खिलाते हैं भगवान। भगवान पान खाकर के जब होंठ इतने लाल कर के इतने सुंदर, आप पगला जाएंगे दर्शन करेंगे, और कहीं दर्शन करने का दिल ही नहीं करेगा, इतना सुंदर उनका मुखारविंद। तो बोलते हैं आगे, उनके श्यामल वर्ण में पान खाने से लाल होने वाला सौ की बड़ी शोभा, सिर के घुमराले बाल, शरीर पर कुमकुम के लाल धब्बे और मस्तक पर लगे चंद्र की प्रशंसा की होगी। अरे आहा, कृष्ण कितना सुंदर पैर चलाते हैं, कृष्ण कितना सुंदर उनके गाल हैं, कितना सुंदर उनकी आंखें हैं। अरे सखी, अब हम कहां जाएं? अब तुम कह रहे हो घर जाओ, वापस कैसे घर जा सकती हम? अब एक बार कृष्ण को जिसने दर्शन किया बस हो गया, जीवन धन्य हो गया, जाना कहाँ है, अब तो वही विराम दे बस। शोभा में मन का विराम, वही कह जाओ बस, रुक जाओ और बस कीजिए नैना विराम। आंखों को अपलक बिना बंद किए आंखें खड़ी खड़े हरिओ और बंसी। भगवान को जितना ज्यादा प्रभावशाली बना सको बना सकते हो, द्रौपदी ने बना दिया। आज इस्कॉन की फोटो, इस्कॉन की बेटी की फोटो जितने लोगों ने चुराई है, सब ने चुराई, क्योंकि उससे बढ़िया चीज मिलता ही नहीं। क्यों बढ़िया मिलता है? क्योंकि ठीक ठीक से शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा हमारे जो पेंटर भक्त ने बना देते मोतियों की माला करे तथा सुंदर मोतियां पहने आधारी, कृष्ण सदैव सुंदर लगते हैं। आधारी मतलब आधार स्वरूप के करीब, कभी कभी कृष्ण बनवानी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बोलिए सबलोग? बनवानी। बनवानी का अर्थ है जंगल का वानी। अतः बनवानी वह है जो अपने शरीर के विभिन्न अंगों को बहुत से फूल और मालाओं से सजाता है, और सारे के सारे जंगल के फूल तो इस ताक पर रहते हैं, कब कृष्ण इच्छा करे और हम जाएं और वहां माला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कृष्ण ने इच्छा करी, फूल अपने आप पूरी माला बन गई। लेकिन फिर भी भक्त लोग सेवा करते माला बनाते हैं, क्योंकि वहां की हर चीज चिन्मय है भगवान के धाम की। इच्छा मात्र से सब इच्छाएं पूरी हो जाती है जब साधारण जीव की, तो भगवान की क्या स्थिति होगी बताइए? भगवान की इच्छा हुई ये माला बदलना चाहता हूं, दूसरे फूल वो फूल अपने आप जन्म में जाने के लगते हैं, क्योंकि वो क्या है, जीवित है। वहां पर डेड बॉडी वस्तु नहीं है, वहां का पत्थर भी बोलता है, सब गिरदार शिला है, सब साधारण शिला है, सब अपने स्वरूप में है। देखिए वहां कोई मृत वस्तु नहीं, इस प्रकार जड़ जड़ है, उसको संसारी मतलब जो चलती फिरती ना हो, जो बोलती ना हो, जानी ना हो, जिसमें हर चीज एक्टिव है। तो कृष्ण न केवल वृंदावन में इस वेश में रहते थे, अभी कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भी इसी वेश में, जब कुरुक्षेत्र में गए भगवान तो भी इसी वेश में थे। सवाल ऐसी रंगीन वेशभूषा तथा विभिन्न फूल की मालाओं को देखकर कुछ महान ऋषियों ने स्तुति की है। कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ने नहीं जा रहे थे, अभी तो अपनी उपस्थिति से समस्त भक्तों को कृतार्थ करने जा रहे थे। हरि बोल। भगवान विष्णु को मारने में उनको 2 मिनट का काम है। दरअसल उनके भक्त जो प्यासे थे,
कितने दिनों से, जैसे वो कौन है जो बादल जब गरजे के बरसे के तभी पानी पीता है, क्या नाम है उसका? चातक पक्षी। वो वैसा पानी नहीं पीता है, जब बादलों से आएगा तभी बस तभी पिएगा, तब तक इंतजार करता है। तो भगवान के भक्त कब प्रभु आएंगे, कब प्रभु का दर्शन होगा, इंतजार करते हैं। ऐसे इंतजार भक्तों के लिए भगवान वहां गए, सबके लिए नहीं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के आगे पीछे घूमते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है उनके आगे पीछे घूमना। तो मेरे को कुसुम सरोवर की घटना आ गई, फूलमाला पर लेकर जा रहा है। तो कुसुम सरोवर में ये राधापुर से डेढ़ किलो दक्षिण पश्चिम में परिक्रमा मार्ग में दाखिल हो पाया जाता है। यहाँ बेली, चमेली, जूही, यूथी, मल्लिका, पारिजात, चंपक, गुलाब, जितने भी बढ़िया बढ़िया फूल हैं वो वहां पर लगते थे। कहां पर? कुसुम सरोवर। और विभिन्न प्रकार के पुष्पों की लताओं और तरुओं से परिपूर्ण कुसुम वन था। यहाँ श्री कृष्ण के मिलने के बहाने श्रीमती राधिका सहेलियों के साथ पुष्प चयन करने आती थी। उस कुसुम सरोवर में क्या करने आती थी राधिका? सहेलियों के सामने फूल चुनने के लिए, तथा उनका रसिक कृष्ण के साथ रसपूर्ण केली पलक और नोक झोंक हुआ करता था। वहां पर कृष्ण के सर में थोड़ा सा नोक झोंक होती थी। अब एक नोक झोंक बड़े सुंदर है, क्या नोक झोंक पीने के प्रसंग के अनुसार एक दिन श्रीमती राधा रानी सहेलियों के साथ वहां पर फूल चयन करने आई। इतने में कृष्ण वहां उपस्थित हो गए। कृष्ण ने पूछा कौन? पता सब है राधा रानी है, लेकिन फिर भी पूछ रहे क्या कौन? राधा रानी बोले। राधा रानी उसी हिसाब से उत्तर दिया। उनको भी पता है कृष्ण पूछ रहे कौन, बोले कोई नहीं। कृष्ण बोलते ठीक से बताओ तुम कौन हो। राधा जी बोलते कोई नहीं। कृष्ण बोलते बड़ी 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 बातें करना सीख गई हो, ठीक है। राधा जी बोलते हैं तुम मेरी सीधी बात करते हो जैसे। अब कभी कभी ये पति पत्नियों में ढंग से चल रहा है, समझ रहे हैं इसको। लेकिन ये ठाकुर जी ने और परम ठाकुराय तो कृष्ण जोर से पूछते कौन हो, क्या तुम नहीं जानते? राधा रानी बोली क्या तुम नहीं जानते जो बार बार पूछ रहे हो? कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अब देखिए ये नहीं ठीक है, इतने नहीं है, ठीक है ठीक है, अच्छा क्या कर रही हो? राधा जी बोलते अब उनको चढ़ाने के लिए सूर्य पूजा के लिए फूल चुन रही है। अब इतना बड़ा व्यक्ति पूजनीय सामने रहे उसको तुम्हारी पूजा करने के लिए नहीं, सूर्य पूजा के लिए। और चढ़ने कृष्ण कहते हैं क्या किसी से आदेश दिया? राधा जी बोलते किसी से आदेश की आवश्यकता ही क्या है, कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण बोलते आज चोर पकड़ी गई, मैं सोचता था प्रतिदिन इस पुष्प बाटिका से कौन फूल चोरी करके ले जाता है, अब समझ में आया ये कौन। तुम यहां से फूल तोड़ के ले जाती हो और पूरा गार्डन तहस नहस कर लेती हो, तथा इस पुष्प उद्यान को संपूर्ण रूप से उजाड़ देते हो। आज तुम्हें पकड़ लिया, अभी इसका दंड दिया। राधा जी का पता क्या बोलती है? ये तो तुम कह रहे हो फूल क्यों चुने, अच्छा ये बताओ कि तुम किस पुष्प बाटिका के स्वामी कब से बन गए? क्या तुम इसके स्वामी हो? क्या यहां एक भी मुहा तुमने कभी लगाया? एक भी मुहा वन की मुहा लगाना तो छोड़ो, एक पौधे का सिंचन भी किया उसको जल डाला? उल्टे तुम तो लाखों लोगों का उद्धत सखाओ, उद्धत मतलब उद्धवी संसारी भाषा में बदमाश बोलू,
तो खुद भी उत्तम करते हैं, उन सखाओं के साथ इस कुसुम मन को उठाने वाले हो बल्कि तुम, तो मालिक बनना तो छोड़ो बल्कि तुम इस कुसुम मन को उठाने वाले हो। कृष्ण बोलते हैं मुझे धर्मात्मा पर आक्षेप मत करो, ऐसा तो मत बोलो मुझे धर्मात्मा हो। अच्छा धर्मात्मा देखो बहुत ऊंचा भाव है, मैं अभी इसको उचित शिक्षा दे रहा हूं। राधा जी बोलते मुस्कुरा के बड़े भारी धर्मात्मा हो, पैदा होते ही नारी का बंद कर दिया, बड़े धर्मात्मा नारी का बंद कर दिया। और बचपन में मजा बोल रहे थे, पास पड़ोस की गोलियों के घर में मंथन चला रहे थे, कुछ बड़े हनुमान गोल पानी का वस्त्र हम कर रहे थे और आए धर्मात्मा अपने आप को बोल रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कृष्ण धर्मात्मा नहीं है, कृष्ण सच में धर्मात्मा, वो जो कुछ करते हैं वही धर्म है। ये तो कहो भारत और भक्तों का अगर किसी का कुछ चोरी कर रहे ठीक है, तो अभी कुछ ही नहीं बोलो एक गाय ने बछड़े का भी उन्होंने बंद किया है। अब राजा रानी हमको ऐसा प्रॉपर्टी मिला बढ़िया से बोले अभी भी एक गाय का भी बंद किया जाए एक बछड़े का भी तुमने वत्सा उसका भी तुमने बंद किया है, यह तो तुम्हारे धर्म आचरण की हद हो गई। उत्तर सुनकर सिर्फ उठाने लगे क्या कहने लगे और देखने लगे, चतुर मंगल ने समझाया बोले कि चुप रहने की भलाई है कृष्ण तुमने तो दुर्गा और लगाई फिर और तुम्हारे बोल खो गई तो मधुमंगल ने चुप करा दिया ठीक है। अब कृष्ण ने बोला कि इसका बदला मैं लेते रहूं, आज मुझे क्या उन्होंने आज मेरे को बदनाम किया है। तो सुनिए पांच कृष्ण ने सोचा कि इसका बदला लेके रहूंगा, आज कितने मेरे सखाओं के बीच में मेरी सारी बोल बोल दी। तो दूसरा प्रश्न, एक दिन प्रातः काल श्रीमती राधा रानी उसी कुसुम सरोवर के पास में फूल चुनने के लिए आई सारी सहेलियों के साथ में। तो कुसुम सरोवर के तट पर ये जितने भी फूल थे खिल रहे थे, श्रीमती जी के वृक्ष की टहनी में प्रचुर पुष्पों को देखकर उस टहनी को हाथ से पकड़कर नीचे कर रहे थे। ये घटना वहीं पर हुई थी टहनी वाली, तो राधा रानी उछल कर उछल रही पकड़ लो मैं पकड़ लो, लेकिन टहनी को नहीं पकड़ पा रही। कृष्ण ने बोला अभी मौका है, गए पीछे से ऊपर टहनी को भार दिया नीचे को झुकाया तो राधा रानी को आसानी से पकड़ना आ गया। जो ही राधा रानी ने पकड़ा कृष्ण ने छोड़ दिया और राधा रानी लटकी रह गई। आगे क्या हुआ देखिए, वृक्ष की डाल पर चढ़कर अपने भार से उसे नीचे झुका दिया, स्वयं डाल पर पत्तों की आग में छिप गए जिससे श्रीमती जी उन्हें ना देख सके। श्रीमती जी पुष्प चयन में विभोर थी, उसी समय कृष्ण दूसरी डाल पर चले गए जिससे वृक्ष की डाल काफी ऊपर उठ गई। राधिका जी भी उसी डाल को पकड़े हुए ऊपर लटक गए, फिर तो वे बचाने के लिए चिल्लाने लगी। उसी समय श्री कृष्ण ने पेड़ की डाली से कूद कर डाली में टंगी हुई श्रीमती को गोदी में पकड़कर उतारा। इधर सखियां इस दृश्य को देखकर के जोर से ताली बजाकर हंसने लगी। कृष्ण तो चाहते थे ऐसा अवसर आए, बोले देखो आज तो तुमको नहीं बचाता तो तुम हो जाती, तो आज से खिल्ली उड़ाना मेरी बंद करो। और अनंत समय से और जब तक वो अनंत लीलाओं का वर्णन करते हैं तब तक भगवान और अनंत लीलाएं होते हैं और कहां पूरी होगी। इसलिए शेष ही नहीं, शेष गणेश सुरेश महेश बोले भैया कोई पूरा नहीं कर पाए तो मैं यहाँ पर विराम लूंगा, लेकिन शेष नहीं हुआ है। और दूसरा एक चीज और, जैसे सूत गोस्वामी बोल रहे हैं सारण्य में कि हे सभी श्रोता भक्तों हे ऋषियों मैं उतना ही तुमको बता रहा हूँ जितना मेरी पहुंच है। मतलब जैसे आसमान कितना ऊंचा है लेकिन पक्षी उतना ही उड़ पाता है जितना वो उसकी शक्ति है। बोले तो मेरा जितना अनुभव है मेरे जितना मतलब जितनी भक्ति है मेरे उतना ही भगवान के बारे में बता पा रहा हूँ बता रहा हूँ, लेकिन भगवान इतने ही नहीं है। Any question? Yeah.